मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग इस साल हज की इबादत नहीं अदा कर रहे, तो वो जिलहजा के ये जो बेहतरीन दिन है इनको किस तरह से यूटिलाइज करें, और ऐसे कौन से एक्स्ट्रा अमाल करें जो हमारे लिए एक बेहतरीन हो?
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने ये बात बताने की सही की है कि हमारी जितनी इबादात हैं, यानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का इजहार हम इबादात की सूरत में करते हैं। जितनी इबादात हैं वो अगर हकीकत के लिहाज से देखें तो तीन ही चीज़ों पर मबनी है। परस्तिश, उसका सबसे गैर मामूली इजहार नमाज है। इताअत, वो रोज़े में आखिरी दर्जे में नुमाया होती है। और अल्लाह ताला के लिए अपने आप को, अपने जानो माल को नज़र कर देना। नज़र की इबादतें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में गाहे गाहे फ़र्ज़ की हैं, इसलिए कि नज़र करने के मौके भी गाहे गाहे होते हैं। परस्तिश तो हर वक्त होनी चाहिए, इताअत की तालीम भी शब रोज़ दी जाती है। तो नज़र की इबादत में सबसे बड़ी इबादत हज है। और हज आप जानती हैं कि ज़ुलहज में, और इसी तरह 9-10 तारीख, 8-9-10 तारीख को होना है। उसके लिए जाना पड़ता है, यानी आप वहाँ जाएँ और वहाँ जा के इहतमाम करके पहुँचें, वहाँ बैतुल्ला में एहराम बांध के दाखिल हों, फिर उसके मनासिक हैं। वो सब जितने मनासिक हैं वो क्या हैं, उनको कुरान कहता है शायर। वो अलामती इजहार है नज़र का, कि मैं अपने आप को अपने परवरदिगार की नज़र करने आ गया हूँ। और नज़र कहाँ करना पड़ता है? शैतान के ख़िलाफ़ जंग में। तो जब कभी अल्लाह ताला बुलाएगा कि मैं शैतान के मुकाबले में बरसरे जंग हूँ, तो मैं अगर जान भी देनी पड़ी तो दे दूँगा। ये रूह है उसकी, उसको एक आप समझिए तमसील में ढाल दिया गया है हज के अंदर। ये मौका नहीं है उस पर गुफ्तगू करने का। मेरी किताब मीज़ान में आप हज के बाब में देख सकते हैं, वहाँ एक एक चीज़ किस तरह इस तमसील से मुतल्लक होती है उसको बयान कर दिया गया है। अब हर आदमी के लिए हज जैसी मशक्क़त की इबादत करना जाना ये मुमकिन नहीं होता। तो साल में एक मर्तबा मौका मिलता है, पता नहीं हालात होंगे, पता नहीं नहीं। तो अल्लाह ताला ने भी बता दिया कि मन इस्तता अलैह सबीला, उसको फिर लोगों के लिए एक सहूलत की चीज़ में तब्दील किया गया उम्रे में। अब वो 5 दिन की इबादत नहीं रही, वो 1-1.5 घंटे की हो गई। उसके लिए मुकरर दिन नहीं रहे, जिस वक्त चाहें आपको सहूलत हो आप चले जाएँ। तो उम्रा, वो भी नज़र, यानी उसमें क्या किया गया है, नज़र की उसी इबादत को जो वहाँ पूरी बात कह रही है कि शैतान के खिलाफ जंग पर उसका खात्मा होता है, और फिर कुर्बानी दे के जो नज़र की सबसे बड़ी अलामत है वो इबादत ख़त्म होती है। तो उम्रे में उसको यूँ समझिए कंडेंस कर दिया गया है कि आम हालात में ये मुख्तसर इबादत कर लें। उम्रा करने के लिए जाना भी सबके लिए आसान नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दीन के सारी दुनिया में वसी हो जाने के मौके पैदा हुए तो ईदुल अज़हा का त्यौहार जारी किया। ये रसूलुल्लाह ने जारी किया, इससे पहले दीन इब्राहिमी की रवायत में नहीं था। तो ये ईद क्या है? ये असल में वही नज़र की इबादत है जो आप फिर उम्रे से भी कमतर मनासिक के साथ करते हैं। यानी इसमें क्या है, ये है कि ये 10 दिन हैं, ये 10 दिन अल्लाह ताला की तकबीर बुलंद करने में गुजारने चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, उठते बैठते नमाज़ों के साथ अल्लाह की तकबीर बुलंद करते रहे, एक चीज़। दूसरे ये कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो तय करें कि कुर्बानी करेंगे, वो भी एक अलामती इजहार है। लाजिम तो नहीं की गई लेकिन तरगीब दी गई है कि अगर हज की सआदत भी नहीं हासिल कर सके, उम्रे की भी नहीं कर सके, तो कम से कम नज़र की इबादत से अपने घर में बैठे हुए महरूम ना रहो। उसमें हम फिर क्या करते हैं, पहली तारीख से नाखून नहीं काटते, बाल नहीं मूंढते, बिल्कुल उसी तरह जैसे एहराम में ये चीज़ें नहीं करते। और 10 दिन तक इन आदाब के साथ गोया अहद करते हैं कि हमने अपने आप को नज़र के लिए पेश कर दिया है। और फिर जानवर की कुर्बानी पर उसका खात्मा होता है, और जैसे ही ईद की नमाज़ हो जाती है तो जानवर कुर्बान करके नाखून भी तराश लेते हैं और बाल भी मूंड लेते हैं। रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा कि मैं तो इस दर्जे मिस्कीन हूँ कि मेरे पास जानवर भी कुर्बान करने के लिए नहीं है। تو اب کیا پھر میں اس نذر کی عبادت سے محروم رہ جاؤں گا؟ آپ نے کہا نہیں، تم پہلی تاریخ کو ناخن نہیں کاٹو گے، بال نہیں مونڈو گے، اور جیسے عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے تم یہ سب کر لو گے، تمہارے لیے تمام الاضحیٰ پوری قربانی ہو گئی، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو چار صورتوں میں ایک پوری عبادت کو تقسیم کر دیا گیا ہے لوگوں کے حالات کے لحاظ سے. تو 10 دن میں سب سے بڑی عبادت تکبیرات بلند کرنا ہے اور اپنے آپ کو ناخن اور بال نہ کاٹ کے گویا نظر کے لیے پیش کر دینا ہے. جیسے ہی نظر پوری ہو جائے گی تو جیسے قدیم زمانے میں غلاموں کے سر مونڈ دیتے تھے، ہم بھی اپنے بال کاٹ لیں گے اور ناخن تراش لیں گے.
میرا سوال ذوالحج کے عشرے میں جو بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ کاٹنے سے متعلق ہے، جو جس کا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا، یہ ہمارے امت کا اجماعی مسئلہ بھی ہے، یعنی تمام کے تمام اہل علم اس پر اجماع بھی رکھتے ہیں کہ یہ ایک مشروع عبادت ہے اور آپ بھی اس کو ایک مشروع عبادت سمجھتے ہیں. لیکن آپ ہی کے ایک ہونہار شاگرد ڈاکٹر عامر گزدر صاحب اس سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی یہ کوئی مشروع عبادت نہیں. تو آپ کے خیال میں ان کو کہاں غلطی لگی، کس طرح سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ وہ اس اجماعی مسئلے سے منحرف ہوئے؟
شکریہ جی.
یہ آپ نے یک طرفہ رائے قائم کی ہے، یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں کیسے غلطی میں مبتلا ہوا؟ جیسے ان کو غلطی لگ سکتی ہے ایسے مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو اس لیے دونوں کے دلائل کا مطالعہ کریں، ان کو پورا حق ہے وہ مجھ سے اختلاف کریں، ان کے ساتھ اگر مجھے کوئی بات کرنی ہوگی تو میں کر لوں گا. علمی چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں اور ان میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ دلیل پر نگاہ رکھیں، ان کے جو کچھ بھی مضامین ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں، خود میں نے اپنے رسالے میں شائع کیے ہیں، ان کو آپ پڑھیں، پڑھ کے جو رائے بھی قائم کرنی ہو وہ کر لیں. یہ بات البتہ صحیح نہیں ہے کہ یہ کوئی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یہ روایت پر مبنی ہے. اور ان کا استدلال یہ ہے کہ روایت پر مبنی ہے تو پھر اس کی بنیاد کس سنت پر ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ عمرے کی سنت پر، وہ جاری ہے، اس میں اسی کو رسول اللہ نے جاری کر دیا ہے، قربانی بھی وہیں سے آئی ہے، اسی میں سے نکالی ہے، ایام تشریق کی تکبیریں بھی وہیں سے آئی ہیں، تو سب کچھ وہاں موجود تھا. اس کے بارے میں کہا کہ تم عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ چیزیں کر لو تو یہ تمہارے لیے گویا حج کرنے کے مترادف ہو گیا. تو یہ دو زاویے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے، ان میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کی باتیں پڑھیے، سمجھ میں آ جائیں، ان کو قبول کر لیں اور الٹ کر سوچیں کہ ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں.